चैप्टर 6। अब आगे। रुद्र की बात सुनते ही रणवीर जी प्रीता को अपने करीब करते हुए अपनी रौबदार आवाज में बोले, मेरी प्रीत क्यों करेगी आरती, तुम्हारी माँ कर रही है ना आरती, तो उसी से करवाओ। जैसे ही रणवीर जी ने सुमन को उसकी माँ कहा, वैसे ही कुछ गिरने के साथ ही एक तेज आवाज आई। सबने जब आवाज की तरफ देखा तो आरती की थाल जमीन पर पड़ी हुई थी, क्योंकि रुद्र ने गुस्से में आरती की थाल को सुमन से लेकर फेंक दिया था। रुद्र गुस्से में अंदर आया और अपने दादाजी के पास जा अपनी खतरनाक आवाज में बोला, दादाजी आगे से मिसेस सिंघानिया को मेरी माँ मत कहिएगा, क्योंकि वे मेरी माँ नहीं है। इतना बोल वे तुरंत लिफ्ट से 5 फ्लोर पर अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहीं दादाजी भी रुद्र की खतरनाक आवाज सुन आगे कुछ भी नहीं बोल पाए। वहीं प्रीता रणवीर जी को देखते हुए बोली, क्या जरूरत थी आपको मेरे पोते को गुस्सा दिलाने की, जब आपको मालूम है कि वे कितना खतरनाक और गुस्से वाला है, फिर भी आप उसे बार बार बहस कर रहे थे, चला गया ना वे। इतना बोल प्रीता गुस्से में रणवीर जी को देखने लगती है। वहीं रणवीर जी प्रीता को देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोले, प्रीत तुम्हें इन सब पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें ध्यान देना ही है तो मुझ पर दो। इतना बोल प्रीता का हाथ पकड़ कमरे में लेकर चले जाते हैं। वहीं प्रीता रणवीर जी की सर्द आवाज सुन डर जाती है और उनके पीछे पीछे चली जाती है। वहीं सुमन जब रुद्र के इस बर्ताव को देखती है तो उसकी आंखों में ना चाहते हुए आंसू आ जाते हैं, जिसे देख धीरज उसके पास आते हुए उसके आंसू पोंछ अपनी कड़क आवाज में बोले, सुमन मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे तुम्हारी आंखों में ये आंसू नहीं पसंद, फिर क्यों बहाती रहती हो। रही बात रुद्र की, तो जिस दिन उसकी जिंदगी में एक अच्छी लड़की आएगी उस दिन वे खुद बखुद सुधर जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, एक ना एक दिन वे आपको जरूर एक्सेप्ट कर लेगा। धीरज जी की बात सुनकर सुमन कुछ नहीं कहती, बस उसके गले लग जाती है। वहीं कामना ये सब देख मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सुमन जी को यूं गले लगता देख धीरज उसके कान में कहते हैं, सुमन अगर तुम इसी तरह मुझसे गले लगी रही तो मैं यहीं पर तुम्हारे साथ कुछ करने लगूंगा, तो मुझे मत कहना। धीरज जी की बात सुनकर सुमन जल्दी से धीरज से दूर होती है, क्योंकि उसे मालूम था धीरज जो बोल रहे हैं वे कर भी सकते हैं, इसलिए वे उनके दूर हो जल्दी से भागते हुए बोली, नहीं मुझे बहुत काम है और पूजा की तैयारी भी करनी है। इतना बोल वे चली जाती है। वहीं धीरज सुमन को खुद से दूर भागता देख अपने दांत पीस लेता है, क्योंकि सुमन हमेशा ऐसा ही करती थी। फिर वे भी अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं सोफे के पीछे छिपे परी और अर्जुन वे दोनों को रुद्र की खतरनाक आवाज सुनकर पहले ही छिपते छिपाते अपने रूम में चले गए थे, क्योंकि उन्हें रूही से मिलने से ज्यादा अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी था। वहीं दूसरी तरफ रुद्र अपने कमरे को खोलता है तो देखता है कि उसका आलिशान सा कमरा इतने सालों बाद भी बिल्कुल वैसा सा वैसा ही है जैसे वे छोड़कर गया था। अपने कमरे को एक नज़र देखने के बाद वे सीधा बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर में फ्रेश होने के बाद वे एक नॉर्मल सा टी शर्ट और पैंट पहनता है और सीधा अपने स्टडी रूम में चला जाता है, जहां पर अमन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। स्टडी रूम में पहुंच रुद्र एक नज़र अमन को देख अपनी किंग साइज चेयर पर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। उसके बाद अमन को देखते हुए अपनी कड़क आवाज में बोला, जो काम बोला था वे हुआ कि नहीं। रुद्र की कड़क आवाज सुन अमन हड़बड़ाते हुए बोला, जी जी बॉस हो गया। इतना बोल वे रुद्र को एक फाइल दे देता है जिसमें रूही की सारी इन्फॉर्मेशन थी। रुद्र उस फाइल को लेता है और फाइल ओपन ही रूही की एक प्यारी सी फोटो उसकी आंखों के सामने थी, जिसमें रूही एक रेड कलर का स्टाइलिश सूट पहने अपने बालों को ओपन कर मुस्कुरा रही थी, जिसे देख रुद्र रूही के तस्वीर पर हाथ फेरते हुए बोला, रू 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 रुद्र की रू। इतना बोल वे एक डेविल स्माइल लिए रूही को देखने लगता है। फिर अमन को देखते हुए बोला, जाओ जाकर पता करो कि वे अभी कहाँ पर है। रुद्र की बात सुनकर अमन अपना सर हामे हिला निकल जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता के भरे भाव थे, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था कि उसके बॉस काम के अलावा किसी और चीज में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वे मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि वे जैसा सोच रहा है वैसा कुछ ना हो, वरना ये उस लड़की के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि उसे मालूम था कि उसका बॉस कितना खतरनाक है और वे अपने बॉस के सारे रूपों को जानता था। वहीं अमन के जाने के बाद रुद्र दोबारा से रूही की फोटो को देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सुमन जी जानती थी कि अब तो रुद्र बिल्कुल भी नहीं आने वाला, इसलिए वे परिवार के बाकी लोगों के साथ पूजा कर लेती है, फिर एक एक कर सबको प्रसाद देने लगती है। वहीं परी और अर्जुन को प्रसाद देते हुए बोली, अब तुम दोनों जाओ और रूही बिटिया को शॉपिंग के बाद घर ले आना। सुमन जी का इतना कहना ही था कि परी और अर्जुन दोनों ही वहां से 100 की स्पीड से निकल जाते हैं, क्योंकि वे पहले ही यहां से जाना चाहते थे, लेकिन सुमन ने उन्हें जबरदस्ती रोक कर रखा हुआ था। वहीं सुमन उन दोनों को यूं भागता देख अपना सर नामे हिला बाकी के कामों में लग जाती है। वहीं कामना जो ये सब देख रही थी वे मुंह बनाते हुए खुद से कहती हैं, पता नहीं भाभी को उस गरीब लड़की रूही में क्या दिखता है जो अपने बेटे और बेटी को उसके पीछे गुलामी करने के लिए भेज देती है। अगर मैं होती तो अपने बच्चों को इन जैसे गरीब लोगों के आसपास भी नहीं भटकने देती। इतना बोल वे मुंह बनाते हुए मिठाई खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अनाथ आश्रम में रूही जब दिशा के साथ कमरे में आती है तो वे दिशा को देख थोड़ा गुस्सा करते हुए प्यारी सी आवाज में शिकायत करते हुए बोली, दी आप मुझे वहां से क्यों ले आई, आपने देखा ना मेरी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी दोनों माँ बेटी मुझे सुना रही थी, अब मैं खूबसूरत हूँ तो क्या इसमें भी मेरी गलती है। दिशा रूही की प्यारी सी शिकायत सुनकर उसे गले लगाते हुए कहती हैं, मेरी जान चुप हो जा,
तुझे मालूम है ना, उन दोनों माँ बेटी से लड़ने से कोई फायदा नहीं। उनका तो कुछ नहीं जाएगा क्योंकि उन्हें सबसे लड़ने की आदत है, पर तेरा मूड जरूर बेकार हो जाएगा। इतना बोल वे रूही के बालों को सहलाने लगती है। तभी रूही का फोन रिंग करता है, जिसके वे दिशा से अलग हो फोन को देखती है। फोन पर परी का कॉल देख वे खुश हो जाती है और परी का कॉल रिसीव कर लेती है। फोन रिसीव होते ही उधर से परी बोलती है, रूही मैं तेरे अनाथ आश्रम के बाहर हूँ, तो जल्दी आ, हमें शॉपिंग पर जाना है। वहीं रूही शॉपिंग का नाम सुन खुश हो जाती है और परी से बोलती है, ठीक है तू वहीं रुक, मैं बस अभी आती हूँ। इतना बोल वे फोन रख दिशा को देख कहती है,
दी जल्दी से तैयार हो जाओ, हम शॉपिंग पर चल रहे हैं। रूही की बात पर दिशा मना करते हुए बोली, रूही तू जा, मेरा मन नहीं है। दिशा की बात सुनकर रूही थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, दी वैसे तो आपका सारा टाइम ऑफिस में ही खत्म हो जाता है, आज ऑफिस नहीं जाना है तो भी आप मना कर रही हैं, पर आज मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनने वाली। इतना बोल वे दिशा को जबरदस्ती खींच अपने साथ ले जाती है, इस बात से अनजान कि वहां उसके साथ कुछ बड़ा होने वाला है।